इन सब में सबसे अच्छी बात क्या हुई कि हमें जीवन जीने की आत्म उन्नति की एक नई राह मिली मिली ना। हमेशा कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं, उसका कोई एक एम ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम जीवन जी रहे हैं तो उसका भी कोई एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जितने भी मेडिटेशन सेशंस हमारे हुए, हमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी रात का ये जो अनुभवों की लेन देन का सेशन है, बड़ा ही सुंदर सेशन है, बड़े ही सुंदर हमारे वक्तागण अपना अनुभव उसमें शेयर करेंगे। तो उन सभी वक्तागणों को मैं बारी बारी आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर, हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता डॉक्टर कनुभाई आचार्य जी। आपसे निवेदन है मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता विशाल यादव जी आप भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता गणेश दत्त जोशी जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता प्रेम कुमार जी, भ्राता प्रेम कुमार जी तालियां बजाएं भाई सभी। हमारी आदरणीय सरला दीदी जी आपसे भी अनुरोध है मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आइए इस सुंदर सेशन की शुरुआत एक मिनट प्रभु का आवाहन करके प्रभु की याद में हम करते हैं। शांति। हमारे वक्ताओं से अनुभव सुनने से पहले मैं सभा से आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर भ्राता सुरेंद्र सिंह डोगरा जी। आप हिमालयनी पत्रिका नेपाल से ब्यूरो चीफ दिल्ली के हैं। आपसे निवेदन है आप कृपया सामने ही आकर एक माइक यहाँ भी अवेलेबल करा दीजिए, नीचे अपना अनुभव सुनेंगे क्योंकि आपको आज जल्दी प्रस्थान करना है। भाई जी आप नीचे से ही सुना दीजिए जी। एक बार तालियां बजाएं भाई के लिए। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी से निवेदन है, आप अपना अनुभव सुनाएंगे।
नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके संपर्क में मैं लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय से आता रहा हूं यहां पर, और आज जो है कंक्लूडिंग डे है, मेरी ट्रेन है। मैंने 3 दिन बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ और बहुत अनुभव लिया यहां पर। संजय द्विवेदी जी का जो है विचार हो, चाहे डॉक्टर मान सिंह परमार जी के और भी एक से एक वक्ता, और बल्कि जो राज्यपाल आए थे वो इतने भावुक होकर बड़े लंबे समय तक उन्होंने अपनी बात रखी। जहां तक मेरे अनुभव की बात है, जैसा मैंने बताया कि मैं प्रथम बार यहां पर, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोहर सिंह जी, उनके माध्यम से मैं यहां पर पहुंचा था और सुशांत भाई से पहली बार भेंट हुई। सच्ची बात तो ये है कि ब्रह्म कुमारी में पत्रकारों को तो अवश्य आना ही चाहिए, क्योंकि पत्रकारों से सभी समाज को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं उपेक्षाएं होती हैं, और कुछ बेहतर करने के लिए आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। पिछली बार नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में मंजू बहन ने, शायद आज मेरी मुलाकात भी हुई थी उनसे, तो उन्होंने शांतनु भाई का एक अनुभव बताया था कि ब्रह्म कुमारी जो है ऑलराउंडर बनाना सिखाती है। तो बिल्कुल ये बात चरितार्थ है और ये सत्य भी है, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। और ब्रह्म कुमारी की, अभी मैं पीछे नेपाल में था 2 महीने से, जिस समय वहां पर सभी दुनिया की निगाह थी, वहां जैन जी ने जो तख्ता पलटा जो हुआ, मुझे प्रियंका बहन ने जो सेक्टर 3 द्वारका में है, जिनके माध्यम से मैं यहां पर आया हूं, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा मेरे को, जबकि पूरा वाकई, क्योंकि मैं भी वहां पर महसूस कर रहा था, बीइंग जर्नलिस्ट मैं सारी चीजें मॉनिटर कर रहा था वहां पर, चाहे वो ऑनलाइन या अखबार के माध्यम से। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा और फिर मैंने वहां पोखरा के अंदर, नेपाल के बड़े खूबसूरत एक शहर है पोखरा, वहां पर पता लगा कि ब्रह्म कुमारी के एक सेंटर पे, जबकि वहां पर बड़ी आगजनी हो रही थी काठमांडू में भी और जो भी प्रमुख शहर थे मोस्टली नेपाल के, लेकिन ब्रह्म कुमारी का एक सेंटर जो कि पोखरा में है, वहां पर कई लोगों ने शरण भी ली और वो इतना सेफ था कि किसी ने ये इस चीज का जो है कहना चाहिए संकेत देता है कि लोगों में एक शांति का एक इतना बड़ा जो संदेश जो ब्रह्म कुमारी ने दिया है, यही वजह रही होगी कि वो पोखरा के सेंटर पर लोगों ने शरण ली और वहां पर किसी ने भी कोई आगजनी नहीं की। और सच्चाई बात ये भी है, मैं ORC गुड़गावा में भी जाता रहा हूं, पिछली बार मैं अपनी पत्नी को भी ले गया था, हुसैन दीदी से संपर्क भी हुआ, तो एक अलग ही वहां पर मोर बिल्कुल ऐसे घूम रहे होते हैं। तो ये प्रकृति की कुछ खास शायद वजह होगी, और मैं सच में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरा भी यहां पर आना होता है तो बड़ा सुकून मिलता है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं, मैं लिखने में ज्यादा विश्वास करता हूं। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, यहां पर क्योंकि पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैंने हेतुड़ा में रुका हुआ था, मैं एक रेजिडेंशियल स्कूल में, और वहां हेतुड़ा में भी मैंने सबसे पहले यह देखा कि यहां ब्रह्म कुमारी का सेंटर कहां पर है। मैंने शांतनु भाई को भी संपर्क करा, सुशांत भाई को संपर्क करा, प्रियंका दीदी को, मतलब मैं जो कर सकता था। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन भी ढूंढा और वहां सुशीला दीदी और नामदेव भाई से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने मुझे कैलेंडर भेंट करा और कुछ चीजें शेयर करी। मैंने एक्सप्लोर करके कुछ लोगों के बारे में जानकारियां लेकर हमें पता लगा कि 271 सेंटर हैं वहां पर, 8 जोनों में बटा हुआ है नेपाल, मैं नेपाल की बात कर रहा हूं। और मुझे इतनी प्रेरणा मिली क्योंकि मेरा जो है पूरा कैरियर जो है जर्नलिज्म का पॉजिटिव राइटिंग पे रहा है, बहुत सारे प्रलोभन मिले हैं लोगों ने, बहुत को किया। मेरे मेंटर जो थे वो IPS ऑफिसर रहे, जो एक्स डायरेक्टर CBI जोगिंदर सिंह जी, मैं उनके साथ ग्रूम हुआ हूं जीवन में। तो हमने कभी भी नेगेटिव चीजों, जीवन में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। क्योंकि मैं मीडिया कर्मी हूं तो मेरे को लगा कि इससे बढ़िया और कोई वो नहीं हो सकता। मैंने वहां वो सब चीजों का एक्सप्लोर करा और आधे पेज का एडिटोरियल विभिन्न इंग्लिश और हिंदी अखबारों में प्रकाशित हुआ, ब्रह्म कुमारी नेपाल के अंदर क्या योगदान है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे भी इसी तरह से आप जो है जो मीडिया के लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, ये सच में सराहनीय भी है और मैं उसको नमन करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। हम सभी मीडिया बंधु और भगिनी कई समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो सबसे निवेदन है प्रोनाउंसिएशन ब्रह्मा कुमारी होता है, ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्मा की कुमारियां जो ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाली है। भाई जी को जल्दी जाना था इसलिए मैंने सबसे पहले आपका अनुवादन लिया। अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें बैच बुके और शॉल से, और हम सभी तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए, सबने भोजन किया है ना, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना चाहिए। तालियां, आवाज ही नहीं आ रही तालियों में। वैसे तो कहा जाता है अनुभव सागर के जैसे होते हैं और समय की सीमा है, सागर को गागर में भरने की हमारे वक्ताएं कोशिश करेंगे, लेकिन आपके सागर में गागर भरे हुए वो शब्द हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी और अमूल्य रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे भ्राता जी डॉक्टर कानू भाई आचार्य जी, जो आप सीनियर कॉलमनिस्ट और राइटर हैं, आप दिशा से आए हुए हैं, और मैं समझती हूँ अभी की सभा में सबसे युवा हमारे भाई जी हैं, तो भाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई जी आप अपना अनुभव शेयर करें।
ओम शांति। हमारे कन्हैया आचार्य जी है, आपने 52 पुस्तक लिखी है और आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, और बहुत ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए उनका अच्छा भाव है कि हम कैसे ये अच्छी बातें सारी मीडिया के द्वारा समाज को पहुंचाए, तो ऐसे महान हस्ती हमारे बीच है माननीय कन्हैया आचार्य।
ओम शांति। समय बहुत कम है इसीलिए सबके नाम नहीं ले रहा हूँ। सम्मानीय मंच और सामने बैठे हुए सब जर्नलिस्ट, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। पहले दिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसी दिन को ऑर्डिनेटर बहन ने एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग हमारे लिए किया था। हम क्या करते हैं, कई शब्द हमारे पास आते हैं, कानों से निकलकर चले जाते हैं, बहुत कम लोगों ने उसको उसका ध्यान दिया होगा, तो उन्होंने हमारे लिए प्रयोग किया पत्रकार मनीषी, हमको मनीषी कहा, पहला सेंटर ये आया, पहला वाक्य आया पत्रकार मनीषी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मनीषी वो थे के वेदों की रुचा जिनके हृदय से प्रकट हुई थी, मनीषी वो थे के उपनिषद के मंत्र जिनके हृदय में से निकले थे, वो मनीषी थे। और हम पत्रकार भी मनीषी हैं, ऐसा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हमारे पास संकेत दे रही है। और हमें यही शब्द ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे आत्म भाई जी ने प्रवचन किया, उन्होंने एक वाक्य उसी वक्त एक वाक्य का प्रयोग किया था, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि पत्रकार अपने ज्ञान के अनुभव से समाज को अच्छा मैसेज देंगे। तो वो ज्ञान क्या है, बड़ी गड़बड़ है ज्ञान में। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं ज्ञानम सदसम पवित्रम इह विद्यते, यहां ज्ञान से पवित्र श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो ज्ञान इतना पवित्र है सरस्वती की कृपा से हमको ज्ञान मिला, तो जो ज्ञान मिला है उसका ज्ञान का उपयोग हम कैसे करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हमें ये बता रही है। बहुत अच्छे यहां जो वक्ता आए थे, बहुत अच्छे वक्ता है, उनके पास बहुत अच्छी सज्जता थी, उनका बहुत अच्छा अभ्यास था, बहुत कुछ उन्होंने हमारे सामने परोसा और बहुत मजा आया, जानने में भी अच्छा रहा। हम अभी अभी हम एक चांद शर्मा से आज मिले, शशिकांत भाई हमारे हमारे डीसा के हैं और हमको यहाँ ले आते हैं, वो सब यहाँ मामे दिखाते हैं। तो उन्होंने आज चांद शर्मा को मिलाया, मैं तो लेखक हूँ शब्द को पकड़ता हूँ। चांद शर्मा ने एक अच्छी बात कही, क्या कहा चांद शर्मा ने, कहा सिनेमा की सृष्टि के वो है जिन्होंने कई फिल्म बनाई है और दादा साहेब फाड़के अवार्ड उनको मिला है, जो बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है फिल्म का, ऐसा अवार्ड उनको मिला है और वो हमें यहाँ मिल गए। तो उन्होंने एक बात बताई, मैं तो बहुत खुश हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में रहा, मैंने कलयुग का स्वर्ग देखा और मैंने सतयुग का स्वर्ग देखा। कलयुग का स्वर्ग बॉम्बे फिल्म सिटी और सतयुग का स्वर्ग यहां मैंने देखा, ये स्वर्ग है, उन्होंने ऐसा बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहांगीर आप नाम जानते हैं, मुगल साम्राज्य का एक बादशाह था, जहांगीर का एक जहांगीर नामा उनकी आत्मकथा है, यही आत्मकथा में जहांगीर ने लिखा है, जहांगीर जब पहली बार कश्मीर में गया, कश्मीर को देखा तो उसके मन में से उद्गार निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में से ऐसे उद्गार निकलते, हम नहीं जानते कौन बुलाता है, कोई एक ताकत होती है जो बुलाती है। तो जहांगीर ने लिखा, हम ही नस्तो, ये फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है स्वर्ग यही है। जब मैं पहली बार यहां आया तो मेरे दिल में भी यही बात आई, हमी नस्तो, स्वर्ग यही है, इससे और स्वर्ग कौन हो सकता है, मुझे बताओ। तो स्वर्ग का वर्णन जो किया गया है, बहुत छोटा था मैंने स्वर्ग का वर्णन पढ़ा है, स्वर्ग के देवताओं में तो लड़ाई भी होती है, स्वर्ग के देवताओं में ईर्ष्या भी थी, स्वर्ग के देवताओं में स्त्रियों के लिए लड़ाई हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने पुराणों में पढ़ा। मैं इसकी टीका करना नहीं चाहता हूं, मैं सत्य बात बताना चाहता हूं। तो वो स्वर्ग था कि जिस जो स्वर्ग में अपसराए नृत्य करती थी, ऐसे स्वर्ग की कल्पना में पांचवी कक्षा में पढ़ता था, तो ऐसे स्वर्ग का वर्णन मैंने पढ़ा। तो ये स्वर्ग था पुराणों का, एक स्वर्ग बंबई फिल्म सिटी का, और एक स्वर्ग यहां अमीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्तो, ये अमीनस्तो है। कितना अच्छा उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां आकर मुझे ये और समय तो 3 मिनट मुझे दिया गया है, और 3 मिनट में गद्य में बात करना जरा मुश्किल है। तो हम भी समय के पाबंद है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल था और समय के अनुरूप काम करता था, इसीलिए मैं काव्य में ही यही बात बताऊंगा कि जो बात मैं गद्य में नहीं बता सकता हूं वही बात हमारी काव्य में बताता हूं। तो जब मैं यहां आता हूं तो मुझे क्या होता है, आत्म प्रसाद भाई ने यह कहा था कि रूह में तूफान सा उठता है। जब ये मैं सुनता था ने, तो मैंने लिखा कि रूह में तूफान सा उठता है, कोई आके दिल से पूछता है। क्या पूछता है? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं पत्रकार क्यों बन पाया हूं। यहां से सवाल पूछा गया था कि आप पत्रकार क्यों बने हैं। तो मुझे भी ये सवाल, ये क्या करते हैं, हमारे दिल है ना, हमारे दिल पे ऐसे टकोरा लगा के कहते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आया। ये आवाज अंदर आती है, गूंजती है, प्रश्न पैदा होता है, और रूह में क्या जाने क्या क्या हो जाता है। और एक बात मैंने वो भी लिखी, वो जब AI की बात बंद थी, व्हाट्सएप मैसेज की बात थी, तो मैंने लिखा कि अब सब दिलदार बन गए हैं, अब सब दिलदार बन गए हैं, रात दिन मुफ्त में खबर दे रहे हैं, बगैर पैसा लीजिए, रात दिन मुफ्त में खबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, ये सब लोग अब सब पत्रकार बन गए हैं। यहां नहीं है वो भी पत्रकार है, हम भी पत्रकार है, लेकिन हमारा फर्ज क्या होता है, वही बात हमें समझनी चाहिए। और दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा था, यहां उसकी 2 पंक्तियां किसी ने बताई थी, तो मैं वो जो है ना, दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छा लिखा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा काम नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा काम नहीं, मेरी कोशिश है कि कुछ बदलना चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में ही सही। दुष्यंत कुमार ने जो लिखा था उसमें मैं एक शब्द का परिवर्तन कर रहा हूं। दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कहीं भी हो शांति का दीप जलना चाहिए, और ऐसी बदलाव हमारे में आना चाहिए। और एक आखिरी बार एक शेर कह के मैं हमारी बात पूरी करता हूं, जो शांति के बारे में एक शब्द है, शांति, शांति शब्द कैसे बना है, स अंत, जिसका अंत हो गया है, किसका अंत हो गया है, संसार का अंत हो गया है, वासनाओं का अंत हो गया है, माया का अंत हो गया है, उसे शांत कहा जाता है, कुछ नहीं बचता है वो शांत। ये शांत शब्द इस प्रकार बना है। एकता के बारे में भी कई बात कर सकते हैं, समय के अभाव में नहीं है, लेकिन मैं इसका एक लेख करूंगा अवश्य। तो छेले आखिरी बार मैं ये कहता हूं कि हमारे पत्रकार जो है, पत्रकार के लिए मैं बोलता हूं कि हम चलते हैं तो रुख भी बदल जाता है। पत्रकार जब चलता है ना तो सारे वातावरण को बदल देता है। हमने देखा है कई पत्रकारों ने ऐसी क्रांति की है कि सारे राज्य राज्य उथल गए हैं, ऐसी क्रांति की है जो हमने भी देखी है। हम चलते हैं तो रुख भी बदल जाता है, हम रुकते हैं तो दम भी ठहर जाता है। अगर पत्रकार खड़ा हो जाए तो सांस को भी एक बार रुकना पड़ता है, ऐसी पत्रकार की ताकत है। हम रुकते हैं तो दम भी ठहर जाता है, हमसे न करो सिकवाई जमाने वालों, हमसे न करो सिकवाई जमाने वालों, अगर हम बदलते हैं तो इतिहास भी बदल जाता है। हमें इतिहास बदलना है, वो काम हम करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने हमारे पास जो अपेक्षाएं रखी है वो अपेक्षा हम पूरी करें, ऐसी बात के साथ ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कन्हू भाई साहब का, आपने अनुभव में बहुत अच्छी बातें बताई। अभी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में ब्रदर विशाल जी यादव पधारे हैं, आप एडिटर इन चीफ जन्ममंत्र.com रायपुर से पधारे हैं, आप भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। माननीय विशाल भाई यादव।
ओम शांति। यहाँ उपस्थित मंच पर सभी का मैं सादर नमन करता हूँ, क्योंकि समय सिर्फ 3 मिनट का, इसलिए सभी को नमस्ते ओम शांति। अनुभव शेयर करने की बात हुई है और मैं चूंकि हमेशा ही फील्ड की पत्रकारिता मैंने की, पिछले 20 साल से मैं लगातार राजनीतिक जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैंने पिछले 10-12 सालों में इस संस्था से मेरा जब जुड़ाव हुआ तो मैंने बहुत सारे अनुभव किए। मैं पत्रकारों की बात करता हूँ जो फील्ड में काम करते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, एकदम मतलब किसी भी बात पे फौरन रिएक्ट करते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ, अगर कोई फील्ड में काम करने वाले लोग बैठे होंगे तो वो समझते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो इसलिए वो रिएक्ट करते हैं कि एक एक खबर को निकालने में जो मेहनत करते हैं क्या, बड़े दबाव में रहते हैं हर समय। लेकिन यहाँ जब आप इस संस्था से जुड़ेंगे, इसको समझेंगे, इनकी बातों को समझेंगे, दीदियों के त्याग तपस्या को समझेंगे, तो स्वयं अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। मुझको लगता है पिछले 3 दिनों में यहां पे जो भी डिस्कशन हुए, यहां पे जो भी बातें रखी गई हैं, और ये पावन धरा जैसा भाई जी ने कहा कि स्वर्ग है, इस स्वर्ग की अनुभूति आप लोगों ने की होगी। यहां जितने लोग बैठे हैं उसमें से हाथ उठाइए, कितने लोगों ने अपने पुराने उसमें और आज के उसमें बदलाव महसूस किया, कितने लोगों ने अपने में बदलाव महसूस किया। कुछ बदला, थोड़ा भी अगर बदला है तो मानिए ईश्वर की कृपा आप पे, ईश्वर ने आपको अपने लिए चुना है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। और कहते हैं ना, सर्व शक्तियां आपके अंदर हैं। हम आंख पर हाथ रख लेते हैं तो कहते हैं पूरी दुनिया में अंधकार है, लेकिन जब आंख खोलते हैं तो पूरी दुनिया दिखाई देती है। उन शक्तियों का खुद को अनुभव नहीं है, अंदर से वो पता नहीं चलती है। आप यहां आएंगे, कितने लोग हैं जो रेगुलर सेंटर जाते हैं? मैं एक बार से आपसे पर्सनल पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं आप हाथ उठाइए जो सेंटर जाते हैं? जो सेंटर जाते हैं उन लोगों ने वो उन चीजों का अनुभव किया होगा, उन्हें वो अनुभव होगा कि दिन प्रतिदिन हम में किस तरह का बदलाव होता है। बातों में विनम्रता, सरलता, सहजता, और आज जिस विषय पे पिछले 3 दिन से जो बातें हुई हैं, यूनिटी, ट्रस्ट और पीस, शांति, एकता और विश्वास, मीडिया में अगर इन तीनों में से एक भी चीज पर अगर मीडिया काम कर ले, वो ट्रस्ट कर ले, तो शांति और विश्वास अपने आप कायम हो जाएगा। वो विश्वास कर ले अपनी चीजों पे, तो अपने आप दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो लाइफ का बैलेंस अगर आपको सीखना है तो यहां से जुड़िए। हफ्ते में भले ही एक बार आप सेंटर जाइए, दीदियों से मिलिए, देखिए कितनी त्याग और तपस्या की मूर्ति है। सारा सांसारिक जीवन छोड़कर वो विश्व कल्याण के लिए अपनी सेवाएं दे रही है, ये बहुत अद्भुत बात है। मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, दीदियों के लिए तालियां बजाइए जो हिसाब, बहुत अद्भुत काम है। और पत्रकारों को पूरे देश भर से इकट्ठा करके यहाँ एक मंच पे लाना और समाज की तरक्की में इतने गंभीर विषय को उठाना किसी असामान्य संस्था, मतलब किसी ऐसी संस्था के वश में नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। जो काम ब्रह्मा कुमारी संस्था ने किया वो बहुत अद्भुत है। देश भर के पत्रकार आए थे, बहुत मंथन, तीन दिन हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से सुना, क्या पारदर्शिता आई, और भी AI के विषय पे हमने बातचीत की, और दूसरे और भी लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। मुझे लगता है कि मैंने जो पिछले 10 सालों में जो अनुभव किया, मैंने अपने आप में बहुत बहुत बदलाव महसूस किया है। क्या मैं तो 10-11 साल हुआ, लेकिन प्रियंका वहाँ बैठी है, वो पिछले 25 सालों से जुड़ी हुई है, क्या, और मुझको लगता है वो बदलाव प्रियंका के कारण ही मुझ में आ गया। तो ये संस्था आपको जीवन जीने की कला सिखाती है, समाज में बेहतर से बेहतर आप कैसे अपना अच्छा दे सकते हैं वो सब सिखाती है। आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना चाहिए। एक मधुकर द्विवेदी सर ने एक बात बोली थी शुरुआती, जब शुरू का सेशन था तो उन्होंने कहा था, जिस समय वो जर्नलिज्म कर रहे थे तो बड़े गुस्सेल किस्म के थे, लेकिन जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, क्या, तो वो यहाँ से गुस्सा छोड़ के गए और विनम्रता लेकर गए। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि कोई पत्रकार अपना गुस्सा छोड़ के विनम्रता और सरलता लेके जा रहा है। आज के टाइम में बहुत सारे जर्नलिस्टों को मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया है, आसानी से वो ना तो एक जगह इकट्ठा होते हैं, ना एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, ना वो शांति से बैठते हैं। क्या मतलब, पत्रकारों को एक तराजू में तोलना, वो कहते हैं ना मेंढक तोलना, भग जाते हैं इधर उधर, नहीं आते साथ में, नहीं आते हाथ में। क्या लेकिन ये संस्था पूरे देश भर से सारे पत्रकारों को यहाँ पर इकट्ठा किया, उन्होंने बहुत अच्छे वक्ता यहाँ पर लाए जिनकी बातों को हमने सुना, क्या, और एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल के आया कि अब हम यहाँ से जाएंगे तो बहुत कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, पहले खुद बदलेंगे फिर आगे बदलने की कोशिश करेंगे। मुझको लगता है यहाँ से जो भी गए हैं बहुत कुछ ले के गए हैं, बहुत कुछ सीख के गए हैं और अपनी बुराइयां छोड़ के गए हैं, वो अपने आप को बदल के गए हैं। ये बदलाव ही आपको नया जीवन, नया प्रकाश और नई प्रेरणा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप लगातार आइए, मेरा तो आपसे यही निवेदन है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मीडिया विंग के शांतनु भाई जी को, सरला दीदी को, योगिनी बहन को, चंदा दीदी को, और जो भी हैं जिनकी यहाँ आने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विशाल भाई का। आप रायपुर में रह के बहुत मीडिया के भाई बहनों की सेवा कर रहे हैं और साल में 5-6 बार यहाँ आके सभी मीडिया वालों को लाते और वहाँ भी सेवा कर रहे हैं ताकि समाज में सकारात्मकता, शांति, आनंद, प्रेम बढ़ सके। मैं आपको ब्रह्मा कुमारी के अंदर मीडिया की शुरुआत कब से हुई मैं अपना अनुभव सुनाऊंगा 2 मिनट। मैं सबसे पहले 1978 में माउंट आबू मधुबन आया, जब सिर्फ पांडव भवन ही था, आप ऊपर जाएंगे देखेंगे, तभी हमारे दादी प्रकाश मणि, जो यहाँ उसका फोटो है, वही ब्रह्मा कुमारी के चीफ थी दादी प्रकाश मणि जी। दादी जी ने सोचा कि जितने ब्रह्मा कुमार भाई बहन पूरे भारत में है उनको अगर मीडिया में इंटरेस्ट है तो उनको यहाँ बुलाया जाए। तो सारे भारत से करीब 22 से 25 भाई बहने आए और दादी ने उनको मीडिया सिखाया कि आपको जाके कैसे बाबा का मैसेज देना है, परमात्मा उत्तरण का मैसेज देना है, समाज में सभी वर्ग को एकता की भावना से सुख शांति कैसे देनी है। इसके लिए 3 साल तक हमको ट्रेनिंग दी गई है माननीय करुणा भाई जी के द्वारा और फिर हमारा ऊपर जो ओम शांति भवन बना, जो बहुत बड़ा हॉल बना, उसी टाइम वो एशिया का सबसे बड़ा हॉल था, जो माउंट आबू में यूनिवर्सल पीस हॉल है, 83 में उसका इनॉग्रेशन हुआ। तब भी पहली बार हमने सारे मीडिया वालों को बुलाया और यूनो के प्रेसिडेंट पीजर द किलर और इजिप्त की महारानी मैडम सादात, वो सारे बड़े बड़े लोग आए थे। उसमें आपको मालूम रहे कि वो खुशवंत सिंह जी हमारे बहुत बड़े पत्रकार हो गए, वो आए थे, चित्रलेखा के कांतिलाल जी थे, वो आए थे। तो सभी पहली बार आए, तो दादी जी जब उनको मिल रही थी, दादी उसने पूछा, दादी जी हम तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, हमको यहाँ क्यों बुलाया? दादी जी ने बुलाया, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और समाज में अगर चेंज करना है, सकारात्मकता लानी है और समाज को कुछ अच्छी चीज देनी है तो वो आपकी कलम से ही होगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय चाहती है कि सभी भाई बहनों को वो कलम कैसे चलावे, उसमें और जोर कैसे भरे, उसमें और शक्ति भरे और समाज को अच्छा बनाने में उनका क्या योगदान रहे, इसी उद्देश्य से आपको बुलाया। तो बहुत वो खुश हो गई है, बोला अभी हमारा हम इतना बड़ा संगठन बनाएंगे कि हर साल हम यहाँ आएंगे। और ऐसे करके हर साल मीडिया को बुलाया गया और आप समझो 83 से आज 55, कितने साल हो गए, 43 ईयर से ब्रह्मा कुमारी संस्था ये मीडिया की कॉन्फ्रेंस कर रही है। और आज तो ये सबसे बड़े भारत में इतने मीडिया को कोई नहीं बुला सकता। मैं गुजरात का मीडिया संभाल रहा हूँ, मैं जब ही अपने एक पत्रकार को फोन किया, करीब 10-12 साल की बात है, मैंने बोला भाई जी आपको माउंट आबू आना है, तो बोला कितने पत्रकार आ रहे हैं, हमने बोला करीब 2000 हो गए, कि आपको पत्रकारिता के बारे में कुछ अनुभव है? मैंने बोला हाँ, मैं बस लिखता हूँ और 1978 से मेरे भी करीब अभी तक 16,000 आर्टिकल आ चुके हैं, नए नए न्यूज़ पॉजिटिव आ चुके हैं। तो बोला 10 पत्रकारों को 2 घंटा संभालना बहुत मुश्किल है और आप हमको आमंत्रण दे रहे हो, 2000 पत्रकार को बुला रहे हैं। हमने बोला भाई जी हम संभालेंगे, आप एक बार आके तो देखो। और फिर वो 8-10 लोग आए, बोला ये तो कमाल है, 4 दिन से इतने पत्रकार इतना साइलेंस से कितनी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये आज पूरे भारत में सभी को मालूम हो गया है कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो पत्रकारिता के बारे में जो सिखाया जाता है, जो खुद को अनुभव होता है, अपने जीवन में भी सुख शांति का अनुभव होता है, वो कहीं नहीं होता है। और हमारी दादी प्रकाश मणि जी का स्वप्न था कि ये हमारे भाइयों को भी बहुत आगे बढ़ना है, आगे रखना है, तो आज उनका संकल्प हम मिलके पूरा कर रहे हैं। इसके दादी जी के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाना कि वो फाउंडेशन वो रहे सारे आप सबको बुलाने के लिए। मैं आगे अभी हमारे बीच है ब्रदर गणेश दत्त जोशी जी, आप एडिशनल सेक्रेटरी बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ के एडिशनल जोनल कोऑर्डिनेट मीडिया विंग दिल्ली से आप पधारे हैं, माननीय गणेश दत्त जोशी जी।
ओम शांति। आज के इस अनुभवों के आदान प्रदान के अंतिम सत्र में आज के चेयरपर्सन आदरणीय सरलता सादगी और डिवाइन विजडम की प्रतिमूर्ति सरला दीदी जी, आचार्य जी, अभी हमने सुना विशाल यादव जी और प्रेम कुमार भाई साहब, कार्यक्रम का जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं योगिनी दीदी जी और शशिकांत भाई साहब, और सामने बैठे हुए सभी मीडिया जगत के प्रबुद्धजन, आप सबको अभिनंदन करते हुए अभिवादन करते हुए 3 मिनट में, क्योंकि ये लेन देन है, सबसे पहले तो मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनली मेडिकल साइड से था, तो वहां पर कहा जाता था कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूं तो कहता हूं कि मीडिया प्रोफेशनल्स या जर्नलिस्ट आर नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि वो सत्यता को समाज के सामने रखते हैं। किस तरह से आध्यात्मिकता हमारे जीवन को परिवर्तन करती है वो तो आप यहाँ अनुभव कर ही रहे होंगे, मैं एक आध एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। मीडिया को वैसे तो चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन समाज की सोच दिशा और दशा को बदलने का कार्य करता है, उसको प्रभावित करता है। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से मीडिया अर्थात एक जर्नलिस्ट एक पत्रकार जो है अपनी लेखनी के द्वारा भी समाज को प्रभावित करता है, उसको उनके जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए किसी ने कह दिया उनके शब्दों से ये काम होता है कि शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द से मरहम। शब्द भी गजब की चीज है, शब्द भी गजब की चीज है, महके तो प्यार का भाव और बहके तो करे गहरा घाव। तो ये शब्द की ताकत है जो हमारे मीडिया प्रोफेशनल्स जो देते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो। मैं अपने आध्यात्मिकता के आध्यात्मिक जीवन के कुछ अनुभव, एक दो अनुभव आपके साथ रखूंगा। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कहीं भी जाते हैं, टू सम एक्सटेंट वी ऑल आर हम रिचुअल, वो रिचुअलिज्म कहलाता है, लेकिन आध्यात्मिकता कैसे जीवन को प्रभावित करती है। ये जब ज्ञान सरोवर बना था, सबसे पहले जब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब डायरेक्टर जनरल थे DRDO के, वो जब आए थे और साथ में सिलवा मूर्ति जी और एक साइंटिस्ट थे वो भी, तो उन्होंने वहां आकर के वो अनुभव किया और बोला वहां पर कि टुडे आई एम एनलाइटेंड। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें वो वर्ड भी उन्होंने चेंज किया, वहां पर लिखा डिवाइन लाइट वर्ड लिखा, वो किताब का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और उन्होंने बात कही, हम लोग दर्शक दीर्घा में थे तो स्टेज पर थे, मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा था कि भारत पर, आज मुझे समझ में बात आई है कि भारत पर इतने आक्रमण हुए लेकिन भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, कि भारत एक आध्यात्मिक शक्ति है भारत के अंदर, वो मैंने आज यहां आकर के समझा। इसी तरह से मुझे एक दो और ये अनुभव क्योंकि याद आ रहे हैं। मैं क्योंकि दिल्ली में जॉब करता था, दिल्ली सरकार में मैं 2018 में रिटायर हुआ वहां से, तो हमारे वहां डेपुटेशन पे कुछ IAS ऑफिसर्स आते थे 3 साल के लिए, तो एक कमिश्नर आए तो मैं जाता था सेवा के लिए, कुछ मेरी जॉब ऐसी थी। तो उन्होंने वो PS जो उनके थे उनको बोला है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसे ही होती हैं, आप ना ये आते हैं इनको वहीं से बाहर से ही भगा दिया करो। तो रक्षाबंधन का दिन था तो मैं दीदियाँ उनको बुलाता था बहनों को राखी बंधवाने के लिए, और भी वहाँ मेयर वगैरह सब बैठते थे, तो जब हम राखी बांधने गए तो अब मना तो नहीं कर सकते थे, तो उनको एक किताब दी, एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, आप कभी लीजिएगा, 2 वॉल्यूम है यहाँ के इंग्लिश में। तो किताब नेक्स्ट डे ही, तो मैं जब आ रहा था, वो अपनी कार से आ रहे थे, मैं तो बस से आता था, तो बस से आ रहा था, तो उन्होंने मुझे देख लिया और जोर से खुद ही आवाज लगाई, मिस्टर जोशी। तो मैंने कहा रही तो साहब हैं, तो मैं आया, दौड़ के आया, मैंने कहा सर, और मेरे को कंधे में हाथ रख करके अपने कमरे में ले गए। कहते मैं तो ब्रह्मा कुमारी जी को ऐसे ही समझता था, लेकिन कल मैंने जो किताब पढ़ी है उस किताब के पीछे 99 बुक्स का रेफरेंस दिया हुआ है, आप ऐसा करना, ये पैसे लो अभी, जितनी भी इंग्लिश में जो भी किताबें हैं वो मेरे लिए लाना। तो ये आध्यात्मिकता को मैंने आज समझा है, ये उन्होंने बात कही। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं, हमने एग्जीबिशन लगाई थी दिल्ली में, प्रगति मैदान है, तो वहां गांधी जयंती होती है जो अक्टूबर अभी आ भी रहा है, तो हमें एक बड़ा सा स्टॉल वहां पर मिलता था। मॉर्निंग का टाइम था, कोई थे नहीं, मैं अकेला उस वक्त खोल करके बैठे हुए थे, तो वहां पर एक सन्यासी आए कोई, और वो 84 ईयर्स के थे, सफेद दाढ़ी और भव्य मुखमंडल उनका, गेरुआ वस्त्र पहने हुए। तो मैंने, जैसे हमारी एग्जीबिशन होती है, हमने एग्जीबिशन समझाई उनको, और एग्जीबिशन देखने के बाद वो बोले, मैं 5 साल का था, मैंने घर बार छोड़ दिया था। मैंने दुनिया की जितनी किताबें हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबल, धम्मपद, सब कुछ पढ़ा हुआ है और 80 देशों में घुमा हुआ हूं। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने जिस चीज के लिए घर छोड़ा था वो मुझे नहीं प्राप्त हुआ। और बड़े आज तो मतलब हिपोक्रेसी वर्ड यूज किया उन्होंने कि मैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, इतने छोटे बच्चे की तरह कहने लगे कि आप बताइए मैं अब क्या करूं। वहां पर हमारी कोई बहनें भी उस वक्त कोई दीदियां वगैरह आई नहीं थी, तो मैं अकेला ही था। तो मैंने उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि आप इतने अनुभवी हैं और इतना आपका अनुभव है, तो आप मैं क्या करूं कहने लगे। मैंने आध्यात्मिकता को मैंने आज तक नहीं समझा। तो इस तरह से मैंने उनको, हमारे वहां काउंटर पे किताब थी, एक 7 डेज कोर्स की किताब होती है, यहाँ पे 7 दिन का कोर्स, आप 7 दिन का कोर्स जिन्होंने जो पहली बार आए हैं वो हम तो चाहते हैं कि आप सेंटर पर जाके अवश्य करें उसको, जिसमें कि आप जो बेसिक कंसेप्ट है ब्रह्मा कुमारी जी का उसको समझेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ से वो किताब जरूर ले जाइएगा, 7 दिन का कोर्स। मैंने वो किताब उनको दी, और वो कौन थे मैंने उनका नंबर या उनका कोई परिचय तो नहीं मालूम किया, लेकिन मैं आध्यात्मिकता क्या होती है जो व्यक्ति को, तो ब्रह्मा कुमारी जी में वो आध्यात्मिकता क्या, जो ज्ञान जो दिया जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, वो मनुष्य को सत्यता को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए मीडिया जगत में आप, क्योंकि आपका काम ही यही है कि आप सत्य का प्रसार करते हैं, सकारात्मकता का संचार करते हैं, मूल्य आधारित, अभी जिसकी जरूरत है जो मूल्य आधारित पत्रकारिता, जो यहाँ से उस बारे में कई बातें हुई हैं, वो आप सोसाइटी को देंगे। तो इस तरह से एक नई प्रेरणा के साथ आप यहाँ से जा रहे हैं। तो अंत में एक दो लाइन के साथ मैं, किसी ने कहा है ये बात, मैंने नहीं कही, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है, अभी तो किताब बाकी है, ये आपके लिए है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता गणेश दत्त जी आपका। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने अनुभव हम सबके समक्ष रखे, बहुत अच्छी कविताएं, अच्छे शब्दों की वर्णमाला आपने हमारे सामने प्रस्तुत की। अब इन्हीं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी भ्राता प्रेम कुमार जी को, आप पटना से आए हैं, आप बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ में जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है, भ्राता प्रेम कुमार जी आप भी अपने अनुभव हम सबके बीच रखें।
सम्मानित मंच और देश के कोने कोने से आए पत्रकार मित्रों, हम तो पहली बार आए हैं यहाँ, लेकिन हमारे यूनियन के लोग हर सम्मेलन में आते हैं। हमारा दुर्भाग्य कहिए या परमात्मा का बुलावा आया तब आए, इतने समय लग गया हमको यहाँ आने में। हमको लगता था कि सम्मेलन है, ऐसे ही लोग जाते होंगे, कुछ बातचीत होता होगा, फिर लोग लौट जाते होंगे, इसलिए हम कभी आने का प्रयत्न नहीं किया। लोग को भेज देते थे जब यहाँ से शांतनु भाई का, या वहाँ श्रीकांत भाई हैं, संजय जी हैं, कई लोग हैं, उनका जब जाता था संदेश तो कुछ लोगों को हम फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ भेज देते थे। लेकिन इस बार देवानंद जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार दूरदर्शन के, इन्होंने प्रेशर बनाया कि सर एक बार चलिए आप साथ में। तो हम अनमने मन से ही आए, अब राजधानी में बहुत काम रहता है तो तब भी समय निकाला आया। लेकिन यहाँ जो मैं देखा, बहुत पछता रहा हूँ कि आखिर आने में इतना विलम्ब क्यों हुआ, हमसे क्या गलती हुआ कि हमको बाबा इतना लेट से हमको यहाँ बुलाए, हमको और पहले आना चाहिए था। मित्रों 3 मिनट का समय है, ऐसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिलॉसफी के टीचर हैं हम, तो घंटों बोलने का आदत है, 3 मिनट तो हमारे लिए बड़ा, टीवी पर भी हमारा लाइव आता है, कई चैनल पर घंटों लाइव आता है, लेकिन 3 मिनट समय है, 1 मिनट बढ़ेगा तो हम माफी चाहेंगे। पत्रकारिता यह कोई पेशा नहीं है, यह एक सेवा है। और बहुत अच्छा भाई साहब बोले कि व्यक्ति जब सारा सिस्टम से हार जाता है, जब उसका कार्यपालिका नहीं सुनता है, जब उसका न्यायपालिका नहीं सुनता है, जब उसका विधायिका नहीं सुनता है, तो उस व्यक्ति को अंतिम में पत्रकार याद आता है। उसको लगता है कि कोई पत्रकार अगर हमसे मिल जाएगा, कोई मीडिया वाला हमसे मिल जाएगा, तो हमारा बात सरकार तक पहुंच सकता है और एक मुद्दा बन सकता है। तो आप साधारण नहीं हो, जरूर हम लोग कोई अगले जन्म में अच्छा कर्म किए हैं, इसलिए हम पत्रकार बने हैं। मतलब हम अंतिम आस हैं। जब व्यक्ति सब जगह से निराश हो जाता है, हार जाता है, थक जाता है, जब उसको कुछ नहीं बचता है, तब वो हमारे हमसे आशा रखता है। इसलिए हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमको सत्य के साथ खड़ा होना है। अब बाबा भी कहे हैं इनका शांति और सत्य ही मुख्य मूल है। और जो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने जिस तरह से जन चेतना, हम तो आज गए थे वहाँ पांडव भवन, बाबा का पूरा जीवनी मैंने देखा कि एक व्यक्ति ठाठ वाठ का जीवन जी रहा है, सोना चांदी हीरा का व्यापारी, और कैसे हृदय परिवर्तन हुआ। और एक छोटा जगह पांडव, वो कितना सुदूर पहाड़ से, आज तो इतना साधन है आपके पास, हम एसी हॉल में बैठे हुए हैं, सारा साधन। आप कल्पना कीजिए उस समय कितना कठिन रहा होगा संदेश भेजना, लोगों को कनेक्ट करना। आज तो मिनटों में हम कहीं किसी से कनेक्ट करते हैं। और उस परिस्थिति में उन्होंने जो सपना देखा, जो जो संदेश दिया, आज इतना व्यापक है। हम लोग का भी कर्तव्य है कि इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी खूबसूरती मैंने देखा, ऐसा आज तक कभी नहीं देखा, हम तो कई कार्यक्रम में जाते हैं, बहाई वाले भी हमको बुलाते हैं, हम ईसाई भाई के भी कार्यक्रम में जाते हैं। पटना में गुरु गोविंद सिंह महाराज का वहाँ जन्म हुआ है, बड़ा गुरुद्वारा हमारे यहाँ, वहाँ भी हम जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं देखा है कि हमारे सिख भाई भी बैठे हुए हैं, तो हमारे इस्लाम धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, महावीर के मानने वाले जैनी भी हैं, यहाँ बुद्ध के मानने वाले बौद्धिस्ट भी हैं, लेकिन सब एक हैं। किस बर्तन में पानी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसको तो उससे पानी का स्वाद नहीं बदल जाएगा, पानी का कलर नहीं बदल सकता है, पानी पानी ही रहेगा, बर्तन भले चेंज हो गया। तो हम लोग जितने लोग हैं सब लोग एक ही माता पिता के संतान हैं। भले हम हिंदू हैं तो हमको पढ़ाया गया या बताया जाता है कि तुम मनु सतरूपा के वंशज हो, ईसाई अपने आप को कहता है कि हम आदम ईव के वंशज हैं, हमारा मुसलमान भाई कहते हैं कि हम आदम हवा के वंशज हैं। तो यह जो तीनों नाम हमको बताया जाता है, तीनों एक ही हैं। वो स्थिति और कालखंड और जगह के आधार पर नाम बदल जाता है। अगर आपका नाम यहाँ दिनेश है, आप अमेरिका जाएंगे तो आपका नाम डेनिस पढ़ा जाएगा। तो यह कालखंड के आधार पर चेंज होता है। और पत्रकार आज सबसे पीड़ित है। आपको आप तो सबको सुनते हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। अभी बिहार में हम लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया, हमारा बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन 1950 से बिहार में काम कर रहा है, और सरकार हमको जमीन भी दिया है, अपना भवन है हम लोगों का वहाँ। तो हम लोगों ने प्रेशर बनाया, तो हमारे यहाँ पत्रकार पेंशन था 6,000। हम लोगों ने नीतीश कुमार से मिला, अभी गवर्नर हमारे बहुत अच्छे गए हैं मोहम्मद आरिफ खान जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने मिला, तभी पेंशन बढ़ के हमारे यहाँ 15,000 हुआ है। पत्रकार बीमा है, उसमें 5,00,000 का बीमा कवर होता है, उसमें सिर्फ 5 ही लोगों का होगा, आपके परिवार के 5 लोगों का होगा, आप, आपके पत्नी और 3 बच्चे। हम लोग उस पर भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम इसमें माता पिता को भी शामिल किया जाए। हमारा तो माता पिता पहले है ना, माता पिता नहीं रहते तो हम कहाँ से आएंगे। तो माता पिता को अगर आप वंचित कर रहे हैं तो हमको न्यूक्लियर फैमिली को और आप भेज रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा यह पहल है, इसको हम लोग कैसे धार दें। और राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने सही कहा कि हम पर, हम जो लिखते हैं आज भी कहता है लोग कि अखबार में छपा है, मतलब वो ऑथेंटिक लोग मानता है। अगर हम कोई खबर हम अखबार में जाती है तो लोग उस पर भरोसा करता है, उसको उसको रेफरेंस कोट भी देता है कि यह खबर अखबार में आया है। थोड़ा इसको हम लोग आज थोड़ा है संक्रमण काल है, और पत्रकार भी कोई ऐसा, हम तो मंगल ग्रह से आए नहीं, समाज से हैं, और समाज जब विकृत होता है तो उसका असर हर जगह दिख रहा है। और ऐसे में ब्रह्मा कुमारी जो बहने हैं, जो हमारे ब्रह्म कुमार भाई हैं, जो काम कर रहे हैं, यह बहुत ही उत्कृष्ट काम है। और हम तो शांतनु भाई से आग्रह किए हैं, कल हम लोगों ने मिला था, हम कहें कि आप एक बिहार में राजस्तरीय कार्यशाला कराइए और उसमें हमारे 38 जिला से पत्रकार आएंगे और वहाँ हम आपको हम सहयोग करेंगे और आपके साथ हम इस तरह का वर्कशॉप करने के लिए तैयार हैं और आप निर्भीक रहिए। पत्रकार अगर निर्भीक नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आज हम लोग भी अगर एक तरफ हम डीजीपी को फोन करेंगे और हमारे यहाँ का कोई एमएलए करेगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग एसपी को ही फोन करते हैं, अगर उसको बताते हैं कि हम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बोल रहे हैं, तो मेरा बात तो गंभीरता से सुनता है। मतलब आज भी आपका सम्मान है समाज में, यह सम्मान कैसे और आगे बढ़े, कैसे मजबूत हो, हम सब लोगों को यह संकल्प लेके जाने की जरूरत है। और हम यह आगे जो अभी हमारे बिहार से 18 पत्रकार यहाँ आए हैं और इसमें बहुत सारे युवा पत्रकार हैं, तो हम आप लोग से भी, यहाँ जितने नौजवान साथी हैं, आपसे भी आग्रह होगा कि हम लोगों का पीढ़ी तो अब गुजरने वाला है। ऐसे युवा का मतलब कोई उम्र से नहीं होता है, हम तो अभी अपने आप को आपके साथ हम गुरु शिखा तक चले गए, चढ़ गए। और हमारे यहाँ बिहार में तो 80 साल में बाबू कुंवर सिंह अंग्रेज से भिड़ गए, तो आयु पर मत जाइए। हमारे देखिए वीर कुंवर सिंह बैठे हुए हैं सर हमारे सामने हैं, तो यह उम्र कुछ नहीं है, लेकिन एक शरीर का अवस्था है। आप लोग में ज्यादा एनर्जी है, इसको थोड़ा और बढ़ाइए और जहाँ भी जरूरत होगा, और हम लोग नियमित रूप से कंकड़बाग में हम लोगों का वहाँ सेंटर है, लगातार तो नहीं जाते हैं, लेकिन अभी यौगिक खेती पर एक कार्यक्रम हुआ था उसमें गया, 21 तारीख को नशा मुक्ति पर कार्यक्रम हुआ था उसमें गया। इस तरह का जहां भी आपके गांव में भी अगर आसपास में सेंटर है, उससे आप जुड़िए और बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। इसी के साथ न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, एक शाम कम ही जियो, सर उठा के जियो। जय हिंद, जय युवा शक्ति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता प्रेम कुमार जी, आपका आपने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत सुंदर हमें मैसेज दिया है कि आज का समय और आज की पीढ़ी किस तरह से साधनों के अधीन होते हुए अपना जीवन यापन कर रही है, जबकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए साधना। चाहे हम किसी भी पथ पर अग्रसर है, हर एक कार्य में हमें साधना की आवश्यकता होती है। मुझे इससे जुड़ा एक किस्सा याद आता है भाइयों। कुछ समय पहले यहाँ पर इसी हॉल में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस थी, देश भर के डॉक्टर्स आए हुए थे। शिवानी दीदी को आप सभी सुनते होंगे, जानते होंगे। शिवानी दीदी आए थे और हमारे आदरणीय जानकी दादी जी, जो कि उस टाइम 102 वर्ष के थे, वो भी उस सभा में उपस्थित थे। ऐसे ही कोई चर्चा हो रही थी साधन और साधनाओं के ऊपर, तो दादी जी ने बड़े नशे से और फलक से कहा कि आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, शायद मैं समझती हूँ, अच्छा वातावरण मिला है, अच्छे साधन मिले हैं, अच्छा एनवायरमेंट मिला है, इसलिए आप यहाँ आए हैं और इसलिए आपको यहाँ पुनः आने का मन करता है। लेकिन जब हम इस यज्ञ में आए थे, जब हम इन संस्था से जुड़े थे, ना तो हमें बैठने के लिए कुर्सी थी, ना हमें बात करने के लिए फोन था, ना माइक था, दो जोड़ी कपड़े थे जो प्रभु मिले, प्रभु प्रसाद के रूप में हम खाते थे, नींद आती थी तो पट पे भी हम सो जाते थे। तो मुझे नशा है कि मैं साधन को देख के नहीं आई, मैं परमात्मा शक्ति को देख कर इस संस्था से जुड़ी हूँ और ईश्वरीय शक्ति ही आज मुझे चलाती है। और वो नशा, वो शक्ति दादी जी को 103 साल तक की आयु में भी देश विदेश में भ्रमण करने की शक्ति देती थी। 103 साल की आयु में भी दादी जी संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यरत थी और देश विदेश के चक्र लगाती रहती थी। कभी हमने ये नहीं देखा कि दादी जी की तबीयत ठीक नहीं, दादी जी आज मिलेंगी नहीं, इतना स्पिरिट, इतना नशा दादी जी को था। तो ये एक आध्यात्मिक शक्ति का ही कार्य है, ये एक मेडिटेशन का ही चमत्कार है, ये ईश्वरीय शक्ति का ही कार्य है। इसलिए आपको 3 दिन से रोज एक ही बात पक्की कराते जा रहे हैं कि हर सुबह उठकर 5 से 10 मिनट परमात्मा की याद में अपना समय बिताओ, उस सुप्रीम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करो, तो जीवन में आने वाली चैलेंजेस, आने वाली परिस्थितियां आपको एकदम खेल लगेंगी। बिल्कुल भी उसका प्रभाव आपके मन पर नहीं होगा। आप सबके मन में बहुत प्रश्न होंगे, आज के हमारे सत्र के चेयरपर्सन का अनुभव हम सुनेंगे, उसके पश्चात आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक का नाम मेरे पास आया है, बाकी जिनको प्रश्न पूछने हैं वो स्लिप में नाम लिख के भावना बहन के पास आप वहां चली जाए, उनके पास दीजिए, वो मुझ तक पहुंचा देंगे। तो हमारे आज के सत्र की चेयरपर्सन आदरणीय सरला दीदी जी, जो कि हमारी मीडिया विंग की वाइस चेयरपर्सन है और हैदराबाद से पधारी है, कई दशकों से आप इस मीडिया विंग में, इस ईश्वरीय सेवाओं में अपना योगदान दे रही है, हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे। सरला दीदी जी।
ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था कि आपके अनुभव सुन करके। हमारे तरफ से आप सबको यहां बुलाना हमारा लक्ष्य और उद्देश्य यही है। सबसे पहले जो मीडिया के कर्मचारी हैं वो शांति से रहे, वो खुशी से रहे, उनके जीवन सुनहरी हो जाए, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि मीडिया में जो कार्य करते हैं मैं जानती हूँ, टाइम बाउंड वर्क चलाना होता है, बहुत स्ट्रेस होता है और बहुत कारोबार में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट होते हैं, तो उसमें आपका पावर इतना नहीं होगा, इसलिए आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, क्रोध भी आ सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए, मैं समझती हूँ मीडिया में कारोबार चलने वाले आपको भगवान की मदद और एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आपका एक एक शब्द दुनिया में बहुत प्रभाव और बदलाव लाने वाले हैं। तो उन शब्दों में ताकत भरना है तो ये ह्यूमन से ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। ये भगवान की मदद से जो इस दुनिया में बदलाव लाने का भगवान का प्लान है वो आपके थ्रू कर सकता है। तो इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। पहले हमारे एक्शन प्लान में भी यही हमने जोर दिया कि अपने जो कमी कमजोरी है स्पिरिचुअलिटी के आधार से, स्पेशली राजयोगा मेडिटेशन के आधार से, कैसे हमारे में वो जो कमजोरी है उसको दूर करें तो हमारा रिलेशंस बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पेशली घर में आप एक शांति का मूर्ति बन जाएंगे। हमारी इच्छा यही है कि हरेक आप एक शांति की प्रतिरूप होकर यहाँ से निकले। जैसे बोलते हैं काशी में जाके गंगा में स्नान करके जाते हैं और सब वो स्नान इसलिए करते हैं हम प्यूरिफाई हो जाए, हम पवित्र हो जाए। तो ऐसे ही ये जो स्थान में आप आए हुए हैं ये सचमुच सच्ची सच्ची पवित्र ज्ञान की गंगा बहने वाले स्थान है। यहाँ जो आपने ज्ञान लिया, ये जो ये ज्ञान इट इज अविनाशी है, ये ज्ञान के आधार से आप कई जन्मों के लिए, नॉट ओनली ये जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए आप आपका भाग्य बनाते हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ आप सब इस भावना से यहाँ आई कि यहाँ से कुछ ले करके जावे, तो भगवान आपको भरपूर करके, सिर्फ आप नहीं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी आपसे बहुत संतुष्ट होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आए और आपके जो कर्म स्थल में आपका एक प्रेजेंस, एक मूर्ति बैठे ऐसे और एक देवता के रूप उनको महसूस हो जाए, तो यही हमारे इच्छा के अनुसार आपको बुलाया। तो क्योंकि गीता में कहते हैं नर नारायण बन सकते हैं, नारायण माना कुछ ऐसा नहीं है, नर की कंप्लीट स्वरूप, जो नर ए ह्यूमन बीइंग, जो सब तरीके की अंदर की जो 7 क्वालिटीज है वो 100% वो क्वालिटीज हम भगवान से ले करके उसको हमारे जीवन में उतारे तो नारायण सचमुच बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि नारायण माना एक ऐसी व्यक्ति है जो पूरा सजे सजा के, नहीं, हम अंदर की जो आत्मा को पूरा अलंकार माना श्रृंगार करके आप यहाँ से जावे और नारायण के रूप वहाँ धारण करके सबके लिए आप एक एग्जाम्पल बने, रोल मॉडल बने, ये हमारी इच्छा है। योगिनी बहन ने कहा अनुभव सुनाओ, तो अनुभव यही होते हैं कि मैं भी मीडिया और एसोसिएटेड पब्लिक रिलेशंस में मैं करीब 30 साल पब्लिक सेक्टर कंपनी BHEL में नौकरी करती थी। आप जानते थे उन दिनों में एक लेडी हो करके, एक महिला हो करके, उन दिनों में महिलाओं को बहुत दबा के रखते थे, ये काम चलाना मेरे में वो जिल मेरे वो स्किल दूसरा मना मेरे सुपीरियर्स को बताना है तो डबल एफर्ट करना पड़ती थी। तो उन दिनों में ऐसी मेरे रोज में घर में आके रोती थी क्योंकि वहाँ की मेल डोमिनेशन बहुत होती थी। मैं किसी के ऊपर भी ऐसा, भगवान ने ऐसा हमारे पेरेंटल केयर ऐसा हुआ मेरे पालना, किसी से भी ऐसा नहीं मना लड़ना झगड़ना वो मेरे व्यक्तित्व में नहीं था। यहाँ आकर मना मेरे को ऐसा लगा भगवान का खोज तो थी कि भगवान कौन है, और भगवान है तो इतना अव्यवस्थित दुनिया क्यों है और दुनिया में क्यों इतना दुख है, ऐसा मेरे क्वेश्चन बहुत ये ना इसका आंसर कहीं से भी नहीं मिलती थी। तो उस समय में मेरे को कोई ने आकर बताया कि भगवान का कुछ बहुत अच्छा आत्मा और परमात्मा करके बताते थे, बता रहे हैं, आप थोड़ा आपको तो इंटरेस्ट है तो आप जाओ करके मेरे नेबर ने बोला। तो मैं जब वहाँ गई थी तो वो पूरा निपटा करके वो पूरा प्रदर्शनी निकाल के लेके गए थे, तो मैं ऑफिसर थी तो पता चलाया हमारे सिक्योरिटी वालों से कहाँ है ये लोग, अभी यहाँ है तो वहाँ वो स्थान का एड्रेस लेके आओ बोले, तो लेके आया। तो वो लोगों का यही मना, जब मैं गई थी एक भाई था तो वो ज्ञान सुना रहा था। पहला दिन जो मैं ज्ञान सुनी तो वो परमात्मा का ज्ञान सुनाया। मैं जो खोज में थी फर्स्ट जो मेरे वो वर्ड मेरे में उतारा, मेरा पूरा फैमिली, आई एम मैरिड, हमारा हस्बैंड और दो बच्चों के साथ मैं ज्ञान सुनी, तो पूरे के पूरा चार एक ज्ञान को पकड़ा उन दिन से ले उसी दिन से लेकर के अभी तक मेरे जीवन में कितना ना मिला, एक एक दिन ऐसा बीत रही है। तो एक एक और छोटी सी अनुभव मैं सुनाना चाहती हूँ। तो उस दिन वो बहन जो हमारा इंचार्ज सिस्टर जो है, उन्होंने कहा सुने आप तो यहाँ के ऑफिसर हैं, हमको ये खाली करने के लिए टेम्पररी उन लोगों को ज्ञान सुनाने के लिए दिया, हमको थोड़ा आप ज्ञान और सुनाने के लिए, नहीं उन्होंने नहीं बोला थोड़ा जगह कहीं और। तो मैंने क्या कहा, ठीक है हम आपको यहाँ कुछ स्थान दे करके आपको दे देंगे ऐसा। तो मेरे नाम पर एक और महीने तक उनको चलाने के लिए, तो एक दिन के लिए 84 रुपीस, क्योंकि मैं वहाँ की नौकरी थी ये मेरे को बहुत याद है, ऐसा करके 84 बर्थ्स का भगवान ने वहाँ ये भाग्य हमारे लिए बनाया। तब से लेकर के अभी तक ज्ञान मार्ग में एक एक दिन एक एक क्षण भगवान ने इतना शक्ति देके प्यार देके आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझती हूँ मेरे जैसे भाग्यशाली इस दुनिया में और नहीं है, नहीं है। क्योंकि अनुभव की बात हमारी प्यारी बहन सुनाने के लिए कही, तो ये अनुभव बात सुनते ही मेरे को वो दिन याद आए जो मैं बीती अभी तक। वो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात समझती हूँ। और अभी इतने सारे मीडिया, करीब 1500 अबव मीडिया पीपल, मेरा दिल भर गई। और एक एक ने आपके जो अनुभव सुनाते रहा यहाँ के, जैसे गंगा में तो आपको डुबकी लगाया, जो यूजुअली गंगा में जो स्नान करते हैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे सी प्याले में थोड़ा वो जो गंगा का पानी लेके दूसरों को बांटना, ये हमारा ऐसा फॉर्मेलिटी होता है। वैसे ही आप जो आपके कलम की ताकत से ये जो ज्ञान की आप अमृत आपने लिया, वो अमृत सबको सुनाने लिखने और बताने और दर्शाने के लिए आप तो जरूर कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है अविनाशी ज्ञान है, सबके लिए जरूरी है। एक वर्ड आपका जो मन में है वो वर्ड दूसरों को मिला तो भी आपके लिए भले पुण्य की खाता में जमा होने वाली, ये मेरी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो मैं उस भगवान को हमारे पिता को बहुत बहुत प्यारे कनेक्शन से मैं यही बात कह रही हूँ। और आपके ऊपर भगवान की शक्तियों की और शांति की वर्षा बरसा रहे हैं। तो और मैं आप जो जाते हैं आपके साथ, एक तो आप शक्ति लेके जा रहे हैं, दूसरा भगवान को साथ लेके जाइए। जो भी आप कार्य करते हैं भगवान को साथ बिठाइए, और भगवान की याद में आप कुछ भी करें वो सचमुच 100% विथ फेथ, इफ यू इन्वोक गॉड एंड देन डू दैट वर्क, दैट वो जो कार्य करते हैं 100% वो सक्सेस होता ही है। जो लौकिक दुनिया के कार्य समझो या अलौकिक के कार्य समझो, आप सचमुच सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन के आपके साथ चलेगी। ओम शांति। इन सब उम्मीदों से आप और आपके परिवार के सदस्य सुखी रहे, आनंद में रहे, और शांति आपका जीवन की शैली होगी। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला दीदी जी आपका। थोड़े क्षण पहले बात चल रही थी युवा मन की, मैंने आपको जानकी दादी जी का भी उदाहरण दिया, और उसके पूर्व मैंने आपको कहा कि हमारी सभा में सबसे युवा भाई साहब बैठे हैं, उनके मन के कुछ उद्गार उन्होंने मुझे लिख कर दिए। उनको बड़ा उत्साह आया कि वाह दीदी युवा कहा हमें। एक्चुअली आपके शब्द भी बहुत
उत्साहपूर्ण है, आपका मन तो आज भी युवा है, शरीर की आयु फिर मैटर नहीं करती। तो भाई साहब के मन के उद्गार उन्होंने लिख कर दिए हैं, वय से वरिष्ठ हूँ मन से युवा हूँ, वय से वरिष्ठ हूँ मन से युवा हूँ, सब काम करने के लिए उत्साहित हूँ, सब काम करने के लिए उत्साहित हूँ, मुझे कम ना समझो दुनिया वालों, मुझे कम ना समझो दुनिया वालों, मैं पत्रकार हूँ और काम से महान हूँ, मैं पत्रकार हूँ और काम से महान हूँ। भाई साहब, हम आपके दीर्घायु की कामना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हर वर्ष आपसे अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छे अच्छे प्रेरणाएं ले, अच्छी अच्छी विशेषताएं आप हम सबके बीच में अपनी रखें, अच्छे अनुभवों से हम आपके ओतप्रोत होते रहें। पुनः एक बार भाई साहब के लिए बहुत बहुत अभिवादन है, धन्यवाद है। अनुभवों के इस लेन देन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेरा नाम, मेरे पास नाम आया है रंगराव बन्ने जी, जो कि कर्नाटक से हैं। आप अपना कुछ शब्दों में, क्योंकि समय की सीमा है, प्रातः जी उस साइड आइए और अपना अनुभव शेयर करिए, या किसी से आपको कुछ पूछना है विषय के संदर्भ में आप पूछ सकते हैं। नीचे से ही आप बात करेंगे भाई जी।
ओम शांति। आज 26 सितंबर से 30 सितंबर तक जे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा माउंट आबू से वो मीडिया कॉन्फ्रेंस, नेशनल लेवल का मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो कॉन्फ्रेंस हमारे सभी पत्रकारों के लिए एक प्रेरणादायी है, ऐसे मैं कहता हूँ। क्योंकि मैं 10 बरस ये सम्मेलन को आ रहा हूँ, सम्मेलन के आने के बाद मेरे मन में भी बहुत परिवर्तन हुआ। मैं हमारे निपणी तालुका बेलगाम जिला में ब्रह्मा कुमारी की कौन सा भी वो फंक्शन आते तो हमारे अखबार में और चैनल में दे रहा हूँ। मैं बरस को हमारे सभी 10 से 20 पत्रकार लेकर आता हूँ। हमारे ये मीडिया कॉन्फ्रेंस के जितना सहकार लगता है वो हम हमारे तरफ से देंगे। बरस को ऐसा कार्यक्रम हमें प्रेरणा आप देते रहेंगे, ऐसे मैं समझता हूँ। और हमारे वो निपाणी तालुका बेलगाम डिस्ट्रिक्ट पत्रकारों के वती से हम ये मीडिया कॉन्फ्रेंस को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ मैं दो बात पूरा करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।
धन्यवाद भ्राता जी। डिसा गुजरात से हमारे वरिष्ठ पत्रकार भगवान दास बंधु जी कुछ शेयर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? भाई साहब शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना अनुभव कुछ शब्दों में हम सबके सामने रखेंगे।
ओम शांति। बापा सीताराम, जय जलाराम। पहले तो मंच पर हमारे गुरुजी कनुभाई आचार्य साहब बैठे हैं, उनको नमन करता हूँ। हमारे गाइड भी शशिकांत त्रिवेदी है, उनको भी वंदन करता हूँ। मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं वो निश्चित नहीं है, लेकिन हम 4 दिन से स्वर्ग में है वो निश्चित है। ये ऐसा अनुभव हुआ है कि 4 दिन से हम स्वर्ग में बैठे। एक दूसरी बात, ये जो मंचस्थ सब वक्ता आते हैं बोलते हैं, मैं बार बार सोचता हूं कि ये सब वक्ता को 1-2 घंटा बोलना जरा आसान है, 1-2 घंटे के लिए उनको वक्तव्य देना आसान है, लेकिन 5-10 मिनट बोलना उनके लिए बहुत कठिन है। और वो कठिन काम सब वक्ताओं ने किया, सबको अभिनंदन। सब यहां बैठे सब भाग्यशाली है। और कहा गया है कि यूं तो हर कोई तमन्नाओं की तस्वीर सजाता है, यूं तो हर कोई तमन्नाओं की तस्वीर सजाता है, पाता वही है जो नसीब साथ लाता है। जो नसीबदार है, भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, वो लोग ही यहां आ सके हैं। और 4 दिन से जो हम सुन रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही बात है कि सोच को बदलो। सोच को बदलेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो हम परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, सबका भला कर सकेंगे। और इससे मुझे याद आता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किनारे बदल जाएंगे। ये सब चार दिन से हम जो सुन रहे हैं, इसमें हम सब ने साथ मिलके हमारे वो नेपाल वाले भाई शायद चले गए, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो हो रहा है, लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह ब्रह्मा कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्था कार्य कर रही है। और हम बार बार ये संस्था में आके स्व को बदलने के लिए, सबको बदलने की जरूरत नहीं, हमने हमारे आपको स्व को बदलने के लिए प्रयत्न करेंगे तो राष्ट्र का भला होगा, ऐसी मेरी सोच है। और ये चार दिन का जो आनंद आया, हम एक नई ऊर्जा लेके घर वापस जा रहे हैं, रिचार्ज होके जा रहे हैं, और घर जाके रीसेट हो गए और फिर से एक नए सोच के साथ काम करेंगे। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। आगे अनुभव को शेयर करने के लिए कुमारी दिव्या सिंह जी आपको आमंत्रित करती हूँ। कुमारी दिव्या सिंह, आप सब एडिटर जी न्यूज से पधारी है। कुमारी दिव्या सिंह,
ओम शांति। मेरा नाम दिव्या सिंह है। जैसा कि बहन जी ने बताया कि मैं ग्वालियर न्यूज 24 से हूँ। सबसे पहले तो मंचासीन महानुभवों को नमन, और मेरे सामने विराजित सभी मीडिया जगत के साथियों को भी अभिवादन। मैंने फर्स्ट टाइम ये नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, जिसका बहुत ही सुंदर विषय रखा गया है, जो कि है रोल ऑफ मीडिया फॉर प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी। तो इस कॉन्फ्रेंस पे मैंने पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है, उस पर मैंने अपने विचार व्यक्त करती हूँ। तो इससे सीख लेते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मीडिया केवल सूचना पहुंचाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को, आत्मा को दिशा देने वाली एक सशक्त ताकत है। जैसे कि आग भी रोशनी भी देती है और विनाश भी करती है, ठीक उसी तरह मीडिया समाज को जगा भी सकता है और जला भी सकता है। हाल ही में बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मीडिया की विचारधारा यदि सकारात्मक हो तो वह समाज को एकजुट बनाती है, और यदि भटक जाए तो वही समाज में विभाजन का कारण भी बन जाती है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि मीडिया का काम सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि संवेदना होनी चाहिए, और हमें यह समझना होगा कि मीडिया की भूमिका केवल रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, वह समाज का दर्पण भी है और मार्गदर्शक भी। झूठी खबरें, अंतरंजना और भड़काऊ बहसें मन में नफरत का जहर घोलती हैं, तो वहीं सत्य पर आधारित तथ्य परक और संवेदनशील खबरें पत्रकारिता समाज में भरोसे के पुल को खड़ा करती हैं। आज समय आ गया है कि मीडियावासी यह संकल्प लें कि हम आग नहीं उजाला बनेंगे, हम सनसनी नहीं संवेदना दिखाएंगे, हम नफरत नहीं नागरिकता का कर्तव्य निभाएंगे, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता ही भविष्य की कुंजी है। यदि मीडिया चाहे तो देश की नई पीढ़ी को जागरूक भी कर सकता है, धर्म और जाति की खाइयों को पाट भी सकता है, और समाज में भाईचारे की नई इबारत भी लिख सकता है। जहां जहां मीडिया ने सच दिखाया वहां अमन और शांति आई, और जहां झूठ फैलाया वहां केवल नफरत की आग भड़की। इसीलिए यह आवश्यक है कि मीडिया स्वयं तय करे कि उसे इतिहास में किस रूप में याद किए जाना पसंद है, आग लगाने वाली ताकत के रूप में या उम्मीद जगाने वाली किरण के रूप में। धन्यवाद।
थैंक यू बहुत बहुत। नेक्स्ट, किसी का प्रश्न आया है, विवेक शिवराम जी का, महाराष्ट्र से बैठे हैं यहाँ पर जी। उनका प्रश्न है, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, मन में फालतू विचार आते हैं, बाबा से हमारा ध्यान लगा कर बाबा से हम बात कर सके, इसके लिए उपाय बताओ। आपका प्रश्न किसके लिए है, मैं चाहूंगी उसका उत्तर सरला दीदी जी आप दे।
मन को कॉन्सेंट्रेट करके कनेक्ट कैसे करे बाबा से।
ओम शांति। जैसे हम यात्रा के लिए कुछ इंतजाम करके ही जाना है, वैसे भगवान के पास यात्रा करने के लिए वो इंतजाम है आपके विचार को बहुत बहुत शुद्ध रखना। जैसे यहाँ पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य के व्रत नहीं, उसके साथ मन के विचार शुद्ध हो, आपकी बोल शुद्ध बोल हो, और आपकी कर्म जो करते हैं वो सबको सुख देने वाले हो। अगर कल आपके मेडिटेशन में भगवान की याद में आप अच्छे अनुभव करना है, तो आज के दिन आप बहुत बहुत आपके ऊपर, आपके जो चलन के ऊपर बहुत आप सुझाव लाना है। तो इस अगर आप इसके कंट्रोल में, आपके मन को इन सब के इन सब चीज़ों में आप शुद्धता लावे, तो क्योंकि भगवान अति अति पवित्र आत्मा है, अगर उनसे मिलना है तो हम हमारा प्लेटफॉर्म उनके इक्वल बनाना है, तब ही हम उनसे बहुत बहुत अच्छी रीति से मिलन मना सकते, क्योंकि वो चुंबक जैसे हैं। हमारे में जो भी कमी पेशी है, जो रस्ट जैसे हमारे में जो नेगेटिव है, उसको निकाले तो इजीली यू गेट कनेक्टेड टू दैट मैग्नेट। भगवान तो मैग्नेट है, तो आप इसके लिए प्रयास करने की जरूरत, योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं ऑलवेज यू आर इन कनेक्शन, बिकॉज ही पुल्स यू। इफ यू मेक, जैसे अगर ट्रेन चलना है तो दो ट्रैक चाहिए, वो ट्रैक को शुद्ध करते रहते हैं तभी वो ट्रेन उसका डेस्टिनेशन जा सकते हैं। ऐसे ही आपका विचार को शुद्ध बनाइए, आपके भाव भावनाओं को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे आपके लिए और सबके लिए, उस श्रेष्ठ भाव भावना से भगवान सचमुच आपको याद करेंगे। इसको स्वतः योगी कहते हैं, इसको सहज योग कहते हैं। जो कुछ काम करे भगवान याद आते रहे, उसको योग बोलते हैं। तो ऐसे योग, क्योंकि ये प्रश्न आप पूछा इसलिए आप में वो दैट इंटरेस्ट है, जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ सफलता है ही। भगवान आपको आपकी इच्छा पूरा कर देते हैं।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। इसमें एक बात और मैं कहूँगी, जबकि आप पत्रकार फील्ड से हैं, मुश्किल हो सकता है पर असंभव नहीं है। आप अपने दिनचर्या में ये रूटीन बना लें। हमारा मन विचलित तब होता है जब हम गलत इन्फॉर्मेशन लेते हैं या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने आंखों के थ्रू अंदर लेते हैं। जो हम देखते हैं वही हमारा चिंतन चलता है और वही हमारे व्यक्तित्व का एक अभ्यंग बन जाता है। कोशिश करें सुबह का 1 से 1.5 घंटा हम पॉजिटिव ही देखें, पॉजिटिव ही सुने, पॉजिटिव ही पढ़े। इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहकर गए हैं कि हमेशा संग अच्छे का करो तो उसका रंग अपने पे लगेगा। उसके लिए शास्त्रों में कहावत भी बनी है, संग तारे कुसंग बोरे। तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए आप इसका भी निरंतर अभ्यास कर सकते हैं, तो आपका मन तुरंत ही परमात्मा से कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जितेंद्र कुमार प्रिंस, जो नोएडा से आए हैं, आप कृपया, समय बढ़ता जा रहा है, कुछ शब्दों में अपना अनुभव शेयर करेंगे हम सबके समक्ष।
ओम शांति। मेरा नाम जितेंद्र कुमार प्रिंस है, मैं नोएडा से आया हूँ, एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। आज जो अपना देश वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में, मीडिया इंडेक्स में 151 नंबर पे है, इसी बारे में मैं चिंता जाहिर करने के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। और ब्रह्मा कुमारी संस्था और आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आखिर मुख्य वजह यह है इसका, और इस पे आप लोगों से मैं निवेदन भी करूंगा कि आप सलाह दें कि आज ये हालत हो रखा है कि सरकार मीडिया को दबा रखी है, कोई भी मीडिया सरकार से या किसी पार्टी से सवाल नहीं करना चाहता है, कोई भी पार्टी हो या नेता हो लोगों को ठग लेता है वोट लेके, फिर उसकी नहीं सुनता है, छोटी मोटी नलियां गलियां सड़कें जैसी समस्या भी हल नहीं कर पाता है, और नेताओं की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है और आम जनता छोटे छोटे मुद्दों के लिए परेशान है। कई लोग कहते हैं कि पत्रकारिता का काम खतरे में है, मगर मेरा कहना है आदमी को सच बोलना और जिम्मेवारों से सवाल करना जरूरी है। जिम्मेवारों से सवाल करने के लिए कोई बड़ा पद या बड़ा चैनल जरूरी नहीं है, आप एक मोबाइल से भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, जिम्मेवारों से सवाल कर सकते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो या प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो। संविधान की ताकत है कि हर एक आदमी का वोट बराबर है। बड़े बड़े पत्रकारों का भी कहना है कि हमारी मजबूरी है कि हमारे चैनल को सरकार से ही विज्ञापन मिलते हैं, तो हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। बात खिलाफ बोलने की नहीं है, बात उनसे सवाल करने की है, जो जो वादे करके आप कुर्सी पे आए, आप किसी पार्टी के हो या किसी पद पे हो या किसी राज्य के हो, मैंने अभी तक किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। इसी कड़ी में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि नेताओं को अपनी चमड़ी मोटी रखनी चाहिए और आलोचना झेलना पड़ेगा। मोदी जी भी कहते हैं आलोचना लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की माँ है, आत्मा है, और ये वही बोलते हैं। आज 11 सालों में एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, और इस प्रकार से मीडिया भारत में नंबर 1 कैसे बनेगी? जो सबसे बड़े पद पे बैठे हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पत्रकारिता पेट के लिए ना करिए, यदि पेट चलाना का मकसद है तो कोई और काम पकड़े, कोई और बिजनेस पकड़े, कोई और नौकरी पकड़े। आपको जिम्मेवारों से सवाल करके देश को बेहतर बनाना है, देश को नंबर बनाना है। आज यह हालत है कि देश के बड़े पत्रकार रवीश कुमार हो, पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो, ध्रुव राठी जैसे लोग हो, उनको घर से निकलना मुश्किल है, वो नहीं निकलते हैं डर से, पता नहीं कौन पार्टी के कौन आदमी हम पे अटैक कर दे या कुछ भी कर दे। और इसीलिए कहता हूं कि देश जो बनेगा वो लोकतंत्र को मजबूत करने से, पत्रकारों को स्वतंत्र करने से बनेगा, कि ना कि किसी भी प्रकार के धार्मिक नारे से लगाने से बनेगा। आप लोग से यही कहना, आप लोग देश के भविष्य, देश को बेहतर बनाने के लिए निडर होके छोटे लेवल के अधिकारी से लेकर बड़े लेवल तक सबसे सवाल करें, देश को बेहतर बनाएं। और इसी का नतीजा है कि आज कई जगह पे बड़े बड़े पत्रकारों को गोदी मीडिया बोल बोल कर अपमानित किया जाता है सड़क पे, जबकि हम लोग का इज्जत वाला है, हम लोग को इज्जत मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग तो छोटे, उन बड़े बड़े मीडिया कर्मियों को गोदी मीडिया करके सड़क पे अपमानित किया जाता है, ये हम लोग की शर्म की बात है। आज नॉर्वे नंबर 1 है देश में, दुनिया में, पर हमारा देश सबसे नीचे है, 151 नंबर पे। एक लाइन और बस थोड़ी सी और, आज सरकार में सबसे ज्यादा अमीर आदमी डरा हुआ है, उसका पैसा सिर्फ सामान खरीदने के काम आ रहा है, उसकी हिम्मत नहीं कि सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, प्रदूषण, किसानों के मुद्दे पे एक बोल सके। आज अमिताभ बच्चन की भी हिम्मत नहीं है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल पे बोल दे, जब 50 रुपए लीटर पे थे वो बोलते थे। लास्ट लाइन बोलूंगा, जब कोई आम आदमी पत्रकारों के हाथ में माइक देखता है तो उसे आशा होती है कि हम अपनी समस्या इसे बताएंगे तो शायद हमारा कुछ काम होगा और हमारी बातें सरकार तक जाएगी और हमारा काम होगा। यदि हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।
आपका अपना घर है भ्राता जी, आप आए, अपने अपने अनुभव सुनाए, हमें बेहद खुशी हुई। मैं समझ सकती हूँ अनुभव की खान है आप सबके पास, परंतु समय की भी एक सीमा है। मैं अगला भाई को बुलाना चाहूंगी, नाथालाल भाई जो डोसा से आए हैं, आप चंद शब्दों में अपने अनुभव सुनाए भ्राता जी, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए।
शांति, मैं हूँ डिशा से, नाथालाल ब्रह्मक्षत्रिय। 5 दिन से हम यहाँ आए हैं, पहले दिन से ही हमें यहाँ स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, हमारे आदरणीय मुरब्बी शस्तिकांत भाई ने हमको यहाँ बुलाया है और कनु भाई आचार्य भी हमारे गुरु हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें जो हमारे पास है वो बेटर करके देना है, ऐसी एक बात हम यहाँ से सीख कर जाते हैं। जैसे कि मैं चित्रकार हूँ और फोटोग्राफर हूँ और पत्रकार भी हूँ, तो मेरे विषय में मुझे अच्छे से लोगों के सामने पेश करना है, ये बात मैं सीख कर जाता हूँ। और आगे जाकर के मैं इसी बात पर डटा रहूंगा और जो यहां से मैंने पाया है वो उसको मेरे जीवन में इस्तेमाल करूंगा। धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू। नेक्स्ट हर्ष जी आइए प्लीज। आप अपना क्वेश्चन है या एक्सपीरियंस है? ओके प्लीज।
आप सभी को ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। मेरा ये उदाहरण बताना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं सोचता हूँ ये बताने से शायद आपके अंदर भी बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो 2 साल पहले मेरी तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब थी एंड मैं ऑलमोस्ट बेड रिडन था। बट तभी अचानक से जैसे हम YouTube चलाते हैं तब मुझे सिस्टर शिवानी के वीडियोस दिखने शुरू हुए एंड तब से मैं सिस्टर शिवानी को बहुत फॉलो करता हूँ। ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ने जब गिव अप भी कर दिया था तब सिस्टर शिवानी के वर्ड्स ने, उनके विजडम ने, उनके वैल्यूज ने, उनके सारे जो भी सिखाई जो भी सॉल्यूशंस है उनको फॉलो कर करके आई फील मच मच बेटर नाउ। सो दिस प्लेस इज सो डिवाइन एंड सो ब्यूटिफुल। बीइंग एन एक्टर राइटर कॉस्ट्यूम डिजाइनर आई हैव टू, हमको हमारा काम ऐसा होता है कि हमको ऑल द टाइम फील्ड पे रहना पड़ता है तो हम घर से काम नहीं कर सकते। सो उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो सिर्फ परमात्मा से आती है एंड वो स्ट्रेंथ मैं इसलिए ये उदाहरण कह रहा हूँ कि अगर आपके भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज गॉड से कनेक्ट हो जाइए एंड ऐसे लोगों से ज्यादा कनेक्ट हुए ताकि आप आपके लाइफ का कुछ बहुत सुंदर कर सके और जीवन में ऐसा प्रेरणा स्रोत बने कि सभी आपको देखकर आगे बढ़े। ओम शांति।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दिल्ली से रघुवीर कश्यप जी। जी प्लीज कुछ शब्दों में अपना अनुभव रखे भराता जी।
ओम शांति। आजकल मैं देख रहा हूँ कि संसद भवन में जितने भी विधानसभा में जो भी हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो पक्ष विपक्ष में एक दूसरे को लेकर के काफी नोकझोंक होती है और काफी झगड़ा होता है और इस चीज को मीडिया में जो TRP बढ़ाने के लिए बड़े बड़े जो चैनल है वो काफी इसको प्रसारित करते हैं जोर शोर से, जो कि यह समाज में एक गलत संदेश जाता है। जो भी बच्चे TV पे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी के तो ये देखते हैं कि हम जिनको चुनकर भेजते हैं सांसद भवन विधानसभा में तो वहां पे झगड़ा करते हैं तो बच्चों पे क्या संदेश जाएगा, समाज में हम क्या संदेश दे रहे हैं। भारत को आप विश्व गुरु बनाने की ओर काम करना चाहते हैं तो आप दिखा क्या रहे हैं? विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आप इस चीज को दिखाइए ना, शांति से जुड़े चीजों को देखिए कि आप में ब्रह्मा कुमारी एकमात्र संस्था है जो कि मीडिया को आगे लाती है और तन मन धन से सेवा करती है। मैं 15 साल से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हूँ और लगातार ब्रह्मा कुमारी में सेवा दे रहा हूँ जितना भी हो सकता है। और देखिए कि यहाँ मीडिया का कॉन्फ्रेंस हर साल होता है 2 बार, तो जितने भी न्यूज चैनल है आज तक जी न्यूज जितने भी बड़े चैनल तो वो इसको प्रसारित नहीं करें अपने चैनल पे। आप दिन भर 24 घंटा में बैठ जाइए कि एक दिन का भी अगर यहाँ का वीडियो संचालित हुआ तो मुझे बताइए, ये चीज संचालित होना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जय हिंद जय भारत।
थैंक यू ब्रदर। नेक्स्ट नीरव जोशी जी। नीरव जोशी प्लीज आप अपना अनुभव हम सबके सामने रखें। उसके बाद आरुषि सिंह जी आप रेडी रहिएगा।
नमस्कार। मैं अपने अनुभव संक्षिप्त में थोड़े शब्दों में समाहित करूंगा, कंक्लूजन करूंगा। बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा ये ब्रह्मा कुमारी संस्था मेरे जीवन में। बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि मैं योग साधना में बचपन से रुचि रखता हूं और खेड़ ब्रह्मा जो यहां से कुछ किलोमीटर के अंतर पे, करीबन 2 घंटे के अंतर पे, उसका निवासी हूं। अभी हिम्मतनगर रहता हूं। मैंने 2004 में पत्रकारिता किया था, कुल मिला के 20 साल हो गए। ब्रह्मा कुमारी ने जो ये कार्यक्रम किया है वो काफी सालों से होता है, ये मैंने सुना था, लेकिन वो मेरी पत्रकारिता की नौकरी के कारण मैं आ नहीं सकता था। मेरे काफी मित्र भी ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं अलग अलग शहरों में। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने रक्षाबंधन पे, वहाँ हमारी हिम्मतनगर की जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में रक्षा बांधी थी ब्रह्मा कुमारी ज्योति मैडम, ज्योति बहन ने, और मुझे लगता है कि उस रक्षाबंधन की जो पवित्र भावना है उसके कारण मैं यहाँ पे आ पाया कि उन्होंने मुझे रक्षा बांधी और मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा कि मैं मेरे अंतरात्मा में इतना आनंदित हुआ कि अचानक मेरे एक राजस्थानी चैनल के, राजस्थान फर्स्ट इंडिया राजस्थान के मित्र ने मुझे फॉरवर्ड किया ये ई पैम्फलेट बोलते हैं या ई फ्लेयर बोलते हैं जो व्हाट्सअप मैसेज वाला, कि फिर से एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पत्रकारिता की और यहाँ पे ये ब्रह्मा कुमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। गुजरात की हो गई थी मई या अप्रैल में, मैंने कवरेज पढ़ा था, दिव्य भास्कर में आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो मुझे फिर से कोई आमंत्रण आया ब्रह्मा कुमारी का, तो मैं फिर से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा कि आज मैं जरूर इस बार जाऊंगा। रात को 11:30 बजे मैंने फोन किया वहां हमारे ज्योति बहन के पीए को कि मुझे जाना है, कल 26 को है, टाइम मेरे पास कम है। तो उन्होंने रात को ही मैसेज कर दिया ब्रह्मा कुमारी बहन को कि नीरव भाई हमारे गुजरात से, हम हिम्मतनगर से जाना चाहते हैं। और सुबह आप सोच नहीं सकेंगे कि ब्रह्मा कुमारी बहन ज्योति बहन का डायलिसिस था हिम्मतनगर में 26 तारीख को, जिस दिन हमारी कॉन्फ्रेंस। फिर भी मुझे उनकी दूसरी दो तीन बहनें जो थी जो हीडर और खेड़ब्रह्मा में, उन्होंने मुझे बहुत शांति से बात किया कि आपको जाने की जो उत्साह, जाने की जो भावना है वो बहुत अच्छी है, हम आपको लेटर लिख देंगे, आप निश्चिंत होके जाइए। और उनकी बात मेरे साथ हो रही थी, तो वो सुन के एक ड्राइवर जो है थे उनको हीडर से एक बहन को छोड़ने वाले, क्योंकि डायलिसिस था ज्योति बहन का, तो दूसरे ब्रह्मा कुमारी को बोले कि नीरव भाई अभी पहली बार जा रहे हैं माउंट आबू, तो हम उनको छोड़ने जाएंगे। तो मैं 26 की रात को यहाँ पे एक ब्रह्मा कुमार की मदद से यहाँ पे पहुंचा। और ये मेरा अनुभव अभी 3 दिन पुराना है, तो आप लोगों को भी प्रेरणा देगा कि श्री अरविंद पौंडीचेरी में, जब मैं पौंडीचेरी अरविंद आश्रम में काफी सालों पहले गया था, तो माता जी ने श्री अरविंद की समाधि पे लिखा था कि गुरु का जो समर्पण है वो उसका हम जीवंत उदाहरण बने। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जो गुरु जी है लेखराज महाराज, लेखराज गुरु जी उनका, और जो 3 महायोगिनी दीदी का जो मैंने उनकी समाधि के दर्शन किए यहाँ के, उनका जीवंत उदाहरण बने हैं। और आज मैंने पूरा 12 घंटे जो माउंट आबू गया मैं, तो माउंट आबू में भी मैंने ये जो देखा कि किस तरीके से प्रजापिता ब्रह्मा जो उनका जो उनके आचरण, उनका जो जीवन था, उनको प्रदर्शन के माध्यम से, तो बहुत खुश हुआ, हमारा जो विषयांतर हो गया। लेकिन ये जो पत्रकारिता कॉन्फ्रेंस है वो भी बहुत ही यादगार रही। इसमें 3 दिन में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे प्रयोग जो है अभी पत्रकारिता के जो नए आयाम है उसके लिए बहुत सारा विचार मंथन हुआ, और मैं चाहूंगा कि उस नए विचारों को हम अपने कार्यों में सम्मिलित करें। ऐसा कहा गया कि ट्रू जर्नलिज्म इज लाइक ए मिशन फॉर द सोसाइटी टू सर्व द ट्रूथ एंड टू अवेकन द सोसाइटी टूवर्ड्स इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये जो फुलफिलमेंट है वो करने के लिए ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उसको गुरुजी ने आदेश दिया है, और इस आदेश के अनुरूप आज 3 दिन या 3.5 दिन का जो आचरण है हमको अलग अलग ब्रह्मा कुमारी दीदियों ने जो दिया है वो, और जो भी आमंत्रित मेहमानों ने, वो हमारे जीवन का एक प्रेरणा पाठे बनेगा, और हम उस सबसे उसे हमारे जीवन के कार्यों को और पत्रकारिता के मिशन को परिपूर्ण कर पाएंगे। इसी विषय के साथ सबको नमस्ते, बेस्ट विशेस टू ऑल,
थैंक यू,
ओम शांति।
थैंक यू, ओम शांति। नहीं सॉरी, अब लास्ट है, टाइम का बॉटेशन है। प्लीज आप सबके मन नहीं, प्लीज आरुषि बहन आप अपना अनुभव सुनाएंगे, उसके पश्चात हम परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे, आप सबके अनुभव हम बैकस्टेज सुन लेंगे। प्लीज 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 सॉरी प्लीज प्लीज आप शुरू करें।
अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, माय नेम इज आरुषि, ओम शांति। आई एम अ रिसर्च साइंटिस्ट एंड अ असिस्टेंट प्रोफेसर एट अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। I just want to, you know, share a few of my experience. Like, you know, I came into Gyan 11 years back. And since that day, I took one step and Baba took 100 steps in front of me. And my first book, which was launched 3 years back, I'm not even a PhD, I'm not even a NET qualified. I don't know, when I was giving my first interview at the Delhi University panel for the assistant professor, I don't know what ignited, मेरी बस एक पहली लाइन लिखी थी वहाँ पे, स्पिरिचुअल सीकर एट ब्रह्मा कुमारी इंटरनेशनल स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एंड आई डोंट नो, वहाँ 8 लोग थे एंड उन्होंने बस 2 मिनट के लिए मुझे बाहर भेजा एंड दे कॉल्ड मी इनसाइड, इस साइड की देन आई वॉज 23। दे सेड तुम अगर इतनी छोटी उम्र में यू आर गोइंग इन टू अ गुड पाथ, तो वी आर नॉट गोइंग टू सी योर अकेडमिक। आई वॉज अ रेडियो जॉकी एट ऑल इंडिया रेडियो, but we are not going to see that. and hope kal se jo joining hai, you are going to enlighten our students. And since it is a point, and since it's 9 years I'm teaching students of mass communication and journalism, but my only thing that I'm actually, you know, telling you people, and trust me on this path, one step towards the God, 100 steps will be from His side. Trust me, it works this way, because I am the live example of a lot of things out there. And I suppose the topic which was role of media for promoting peace, unity and trust in society, it was nothing to do with media. Media is just a medium, it's a non-living thing. Ye agar apne andar qualities hongi to ye aapke khud ke profession mein aa jayengi. Whether it's a teaching, whether you are in army or in police officer, XYZ. So what I personally feel, these are the qualities of yourself. It's not a quality of any profession. Aap khud acche baniye, aapko sab kuch acha dikhai dega. Thank you so much. Om Shanti.
Bahut bahut dhanyawad aapka. Aap sabki bhavnaon ko please, behan please, प्लीज टाइम अप हो गया. कहना चाहती हूं कि यहां के जो भी साहित्य है उनमें सब में मेल लिखे हैं, वेबसाइट लिखी है, और सरकार ने ये सूचित किया है कि आपको 60% न्यूज लेने हैं, बाकी के सोशल धार्मिक ले सकते हो. मैं थैंक यू. नहीं, अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है. हम सभी को एक छोटी सी घटना में बताकर इस सत्र का समापन करना चाहूंगी. चलो हम 10 सेकंड परमात्मा की याद में बैठते हैं.